समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी श्रोताओं का। पब्लिक स्पीक में मैं हूं आपके साथ फरहतनाज। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की कर्मचारी नामांकन योजना के बारे में। ईपीएफओ के माध्यम से बड़ी संख्या में श्रमिकों को संगठित सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की ये एक महत्वपूर्ण पहल है और ये योजना 1 नवम्बर 2025 से शुरू हुई थी और 30 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगी। इसमें नियोक्ता उन सभी मौजूदा कर्मचारियों का नामांकन कर सकते हैं जो 1 जुलाई 2017 और 31 अक्टूबर 2025 के बीच प्रतिष्ठान में शामिल हुए थे और आज हम इसी विषय पर जानकारी हासिल करेंगे, जिसके लिए स्टूडियो में आज हमने आमंत्रित किया है सीपीएफसी में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति जी को। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
नमस्कार, थैंक यू।
श्रोताओं, हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0112371 0112371 7 0112371 7 0 6 और 0112314444। और आप व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें मैसेज के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। 9289094044 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा #AskAIR के साथ एक्स पर भी आप सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो हमें है आपके फोन का इंतजार, लेकिन आइए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं और कृष्णमूर्ति जी से जानते हैं कि कर्मचारी नामांकन योजना क्या है।
देखिए, ये कर्मचारी नामांकन योजना 2025 जो है वो, जैसे कि आपने बताया, 1 नवंबर 2025 शुरू हो चुका है। इसमें जितने एम्प्लॉयर हैं वो, उनको एक चांस दिया गया है वॉलेंटरी बेसिस पे। वो आके अपने जितने छूटे हुए, जितने लोग कर्मचारी छूट गए पीएफ के रजिस्ट्रेशन से, उनका नामांकन करके उनका पीएफ काट के उनका पीएफ ईपीएफओ में जमा कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन जितने भी नियोक्ता हैं, जितने एम्प्लॉयर हैं, उनको कभी पुराना जो डिक्लेरेशन है उसके लिए पेनल्टी नहीं पे करना पड़ेगा। केवल एक मात्र 100 रुपये का टोकन पेनल्टी है जो कि उनको पे करना है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि उनका जो भी पुराना हिसाब किताब हो उसके बारे में कोई भी पूछताछ नहीं किया जाएगा। तो ये पूरी तरह से एक वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम है, जिससे कि एम्प्लॉयर जो है अपना पुराना अगर किसी का छूट गया हो तो अब से वो पीएफ काटना शुरू कर सकता है और पीएफ जमा करना शुरू कर सकता है।
जी, अच्छा, इस योजना में एनरोल करने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है?
देखिए, ये जो है पूरा जो कैंपेन है, एम्प्लॉय एनरोलमेंट कैंपेन, जो नामांकन कैंपेन है, ये एम्प्लॉयर को ही रजिस्टर करना होता है। ये हमारे ईपीएफओ के पोर्टल में आके अलग सा एक उसके लॉगिन पे एक अलग टैब है जिसमें कि लिखा हुआ है एम्प्लॉय एनरोलमेंट कैंपेन, तो उसके तहत वो उसमें रजिस्टर करेगा। और रजिस्टर करके सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको एक इलेक्ट्रॉनिक चलान कम रिटर्न के माध्यम से जितने भी छूटे हुए कर्मचारी हैं उनका जो पीएफ जो जितना काटा है उन्होंने, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों जमा करेंगे। इसमें एक और फायदा है एम्प्लॉयर को, वो अगर एम्प्लॉई का डिडक्शन पहले का नहीं कटा है और केवल एम्प्लॉयर अपना शेयर देना चाहता है तो ये भी पॉसिबल है। इसमें ये भी फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है कि आज के दिन से वो अपना जो नामांकन है आज के दिन से भी कर सकता है। पुराना अगर बाय चांस छूट भी गया हो, नहीं करना चाहता, आज से शुरू करना चाहता है तो आज से भी कर सकता है। अगर वो बोलता है कि नहीं, मेरे ये एम्प्लॉई जो है 2022 से ज्वाइन किए हुए हैं, मैं जमा करना चाहता हूं उनका शेयर, तो वो भी जमा कर सकता है। लेकिन ये जरूर ध्यान रहे कि अगर एम्प्लॉई का पैसा उन्होंने काटा है तो वो जमा करना जरूरी है। अगर नहीं काटा हो तो कोई बात नहीं, अभी फिर से काट के जमा करने की जरूरत नहीं है, केवल वो एम्प्लॉयर अपना शेयर जमा कर सकता है।
और अब एक प्रश्न ले लेते हैं गुरुग्राम से कमल किशोर जी से। जी कमल जी।
हाँ, नमस्कार।
नमस्कार
नमस्कार।
मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या 15,000 से ज्यादा पेमेंट पाने वाले भी पीएफ के दायरे में आएंगे?
देखिए, 15,000 जो है वो मैंडेटरी क्लॉज, मतलब कि इनको तो अनिवार्य है कि एम्प्लॉयर जो है वो कवर करे। 15,000 से ऊपर जब वेतन चला जाता है, वेजेस चले जाते हैं, तो ये ऑप्शनल है, वॉलंटरी है। अगर एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों लोग चाहें तो फिर उनका नामांकन भी किया जा सकता है।
जी अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास है। मनोज कुमार जी ने पूछा है कि उनकी कंपनी जो है पीएफ सैलरी से जो है वो काट लेती है कुछ परसेंट, तो 8-9 महीना हो गया है और अभी तक जो है वो ये जमा नहीं किया गया है, तो ऐसे कैसे कर सकते हैं उसको जमा?
नहीं, तो ये तो गलत है। ये सीधा सीधा जो है कंप्लीट वायलेशन ऑफ लॉ है। अगर उनका पीएफ काटा गया है और जमा नहीं किया गया है तो इनके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई होगी। इनकी जानकारी अगर हमारे नियरेस्ट ईपीएफओ के रीजनल ऑफिस, अगर ये नोएडा में है तो नोएडा के जो ऑफिस में जाके कंप्लेन करें तो इनके एम्प्लॉयर के अगेंस्ट सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जी अच्छा, पीएफ नंबर है या फिर नंबर नहीं है वो कैसे पता चलेगा, ये द्वारका से एक प्रश्न पूछा गया है।
देखिए, जितने भी पीएफ का रजिस्ट्रेशन होता है वो आधार के बेसिस पे होता है,
ठीक है।
तो अगर उनका अगर यूएएन नंबर है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, तो उनका जो है वो आधार बेस्ड होगा। तो अभी भी जाके वो चेक कर सकते हैं ईपीएफओ के वेबसाइट में, अगर उनको यूएएन मालूम है उनका। अगर एम्प्लॉयर जो है अगर वो पीएफ काटता है तो वो एक रिटर्न फाइल करता है। रिटर्न फाइल करने के बाद ईपीएफओ के तरफ से उसको रेगुलरली एक एसएमएस भी जाता है कि आपका इस महीने में इतना पीएफ कटा है। तो इसी सब माध्यम से पता चलता है। ईपीएफओ में जो एम्प्लॉई पोर्टल है epfo.gov.in या फिर epfindia.gov.in, इसमें जाएं, मेंबर पोर्टल में लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद आपका मेंबर का पासबुक दिखता है, तो पासबुक में सारा विवरण होगा कि कितने पैसे हर माह, कितने पैसे आपके कटे सैलरी से, कितने पैसे एम्प्लॉयर ने अपना हिस्सा जो है भुगतान किया।
ठीक है सर, ये बताइए कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जिसकी अभी आपने बात करी वो कैसे बनाया जा सकता है?
ये आजकल हमने काफी सिंप्लीफाई कर दिया है। हमने ये कहा है कि उमंग जो ऐप है हमारा, भारत सरकार का उमंग ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जो फेस ऑथेंटिकेशन है, मतलब कि जो आधार में फेस ऑथेंटिकेशन करके एक नया फीचर दिया गया है, उसमें मोबाइल के अपने कैमरे के द्वारा अपना फेस को रजिस्टर करेंगे जो आधार से लिंक्ड है, और ये अगर इसमें पाया जाएगा कि इस आधार पे पहले कोई यूएन नहीं दर्ज किया गया है, तो तुरंत ऑन द स्पॉट फेस ऑथेंटिकेशन के साथ आधार वेरीफाई हो जाता है और एक यूएएन भी जनरेट हो जाता है उनके लिए।
और दिल्ली से अब प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रतीक जी,
नमस्ते। नमस्ते मैडम।
नमस्कार
मैडम, ये जो अभी कंडीशन चेंज हुई थी कि आप इन्वेस्ट के जो पैसे हैं एक साल के बाद निकाल सकते हैं,
जी
वो क्या लागू हो गई है या अभी नई कंडीशन लागू, पुरानी कंडीशन से ही हम विड्रॉल कर सकते हैं?
जी अभी तक जो है ये हमारा अक्टूबर 13 के जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का जो मीटिंग हुआ था, जो हमारे माननीय लेबर मंत्री हेड करते हैं, उस बैठक में इसका ये जो प्रस्ताव था ये पारित हुआ था। अभी तक लागू नहीं हुआ है। इस पे नोटिफिकेशन, स्कीम का नोटिफिकेशन अमेंडमेंट जो है वो नोटिफाई होगा और सॉफ्टवेयर भी चेंजेस होंगे। ये इस पे अभी काम चल रहा है। जब ये काम हो जाएगा, तब जब नोटिफाई हो जाएगा उस दिन से ये लागू हो जाएगा। तब तक के लिए पुराने जो स्कीम के हिसाब से जितना भी विड्रॉ करना था आप विड्रॉ कर सकते हैं।
अच्छा, एक और प्रश्न जो है व्हाट्सएप के थ्रू हमारे पास आया है कि असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के श्रमिकों को औपचारिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए क्या भविष्य की योजनाएं हैं?
अभी देखिए, जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो अभी नोटिफाई हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें जो फॉर्मल सेक्टर हम उनको बोलते हैं जो सैलरी कमाते हैं, जिनका एक सैलरी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिनका सोशल सिक्योरिटी जैसे पीएफ हो, ईएसआई हो, ये कटता है, इनको हम फॉर्मल सेक्टर वर्कर बोलते हैं। जो असंगठित वर्कर, जो इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स होते हैं, उनका कोई सैलरी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, मतलब उनका कोई मासिक आय कोई तय नहीं होता है। तो इनका जो है जैसे जॉब वर्क टाइप का कोई कार्य करते हैं उसके लिए अलग अलग काम मिलता है, तो उसके बेसिस पे पैसा मिलता है इनको। तो इसके लिए जो है पहली बार ये जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है उसमें इनके लिए भी प्रावधान किया गया है कि इनका भी सोशल सिक्योरिटी कवरेज होगा। इस पे सरकार जो है इसका स्कीम बना रही है उसके बाद ये लागू होगा इसका स्कीम
जी। अच्छा कृष्णमूर्ति जी, ये बताइए कर्मचारी नामांकन योजना की हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या इस योजना के तहत जो पुराने बकाए हैं यानी जो एरियर्स हैं वो जमा करने पर कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती होगी?
जो इसमें मैंने इसीलिए शुरू में कहा था कि ये पूरा वॉलंटरी बेसिस पे है। अगर एम्प्लॉयर चाहता है कि वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों लोग चाहते हैं कि पुराने टाइम का भी पीएफ कटे और उसका भी जमा हो, तो ये उनके ऊपर डिपेंडेंट है, वो कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि नहीं पुराना वाला जो हो गया हिसाब किताब हो गया उसका कुछ उसको नहीं उसकी छेड़खानी नहीं करनी है, आज से उसको कवर करना है तो आज से भी कवर कर सकते
जी। अच्छा बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें अनुबंधित कर्मचारी यानी कॉन्ट्रेक्चुअल्स काम कर रहे हैं और बहुत सारी संस्थाएं ऐसी भी हैं जिनका पीएफ नहीं कटता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
देखिए इसका मैं एक चीज बताना चाहूंगा, काफी जगह से ऐसा एक रहता है कि हमारा पीएफ नहीं कट रहा है
जी,
तो इसका दो कारण है। एक तो है कि जो पीएफ के दायरे में जो आते हैं वो 20 कर्मचारी से ऊपर अगर कोई भी एम्प्लॉयर का होगा तो तभी अनिवार्य है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं जिनका जो मासिक वेतन है वेजेस जो है वो 15,000 से अगर नीचे होंगे तभी ये पीएफ का कटना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इसके ऊपर जितना भी जिसको जिसकी कमाई है उनके लिए ऑप्शनल है, मतलब उनके लिए हो सकता है वो पीएफ काटने का जरूरत ना हो, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्लूडेड एम्प्लॉयज। लेकिन अगर ऐसे सिचुएशन में दोनों एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों कहते हैं कि हाँ पीएफ काटेंगे, हम अग्री हो रहे हैं कि पीएफ कटना चाहिए, तो फिर ये काट के हमारा ईपीएफओ में जमा कर सकते हैं।
यानी आपका वेतन अगर 15,000 से नीचे है तो ये कंपलसरी हो जाता है काटना जी। अब त्रिपुरा से अविनाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। अविनाश जी
जी नमस्कार।
नमस्कार
जी, मेरा सवाल ये है कि जो 100 रुपए का टोकन हम नामांकन भरने के लिए जो देंगे ये क्या सिर्फ एक साल के लिए है या फिर हर साल रेन्यू करना पड़ेगा?
नहीं, ये जो है ये जैसे मैंने कहा कि ये जो है ये प्रथम बार जितने भी छूट गए लोग उनको नामांकन करने का जो है तरीका वो ये है कि हमारे ईपीएफओ के पोर्टल में जाके रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद डिक्लेरेशन करें, उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न है उसमें हर जो छूटा हुआ एम्प्लॉई है उसका विवरण आपको देना होगा, उसका यूएएन क्या है, उसके बाद उसका वेतन कितना था, उसमें पीएफ कितना कटा, और ये आपको जमा करना होगा। ये आप चाहे आज से करें या पिछले 3 महीने से करें 6 महीने से करें, लेकिन ये एक ही रिटर्न में सारा उसका विवरण जितने भी एम्प्लॉयज का जितने भी पीरियड का आपका पीएफ आपको जमा करना है इसका आप जमा जब करेंगे तब एंड में आपको 100 रुपये एक बार में एक ही मुश्त में आपको पेमेंट करना होगा। इसके अलावा बार बार 100 रुपये नहीं पे करने हैं। उसके बाद से लेकिन आप ध्यान रहे कि हर महीने आपको ये पीएफ काटना है और ये लगातार आपको फिर कंप्लायंस करना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब ये है कि पुराना हिसाब किताब आपने एक बार कर दिया उसके बाद से हर महीने में जैसे नॉर्मल पीएफ कटता है लोगों का वैसे नॉर्मल आप काटेंगे, हर महीने में आप रिटर्न भरेंगे
जी। कृष्णमूर्ति जी, व्हाट्सएप से अब एक मैसेज आया हमारे पास। सर मेरा नाम शिवम रावत है और मैं दिल्ली में रहता हूं और एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हुए 4 साल से अधिक समय हो गया है पर कंपनी ने मेरा अभी तक पीएफ चालू नहीं किया है और कई बार बोलने के बाद भी ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं?
देखिए ये जैसे मैंने कहा ये जो है अगर आपके एम्प्लॉयर के पास 20 लोगों से ज्यादा है तब तो ये पीएफ काटना उनका अनिवार्य है, अगर उससे कम है तो ये एम्प्लॉयर का डिस्क्रिशन है, उसका वॉलेंटरी बेसिस पे वो पीएफ काट भी सकता है और जमा भी कर सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि अगर वेतन आपका 15,000 से ऊपर है तो तब भी ये वॉलेंटरी है, तभी मैंडेटरी नहीं है। तो कानून ये कंपलसरी नहीं करता है कि आपका पीएफ कटना चाहिए, लेकिन जैसे आपने कहा कि आप चाहते हैं कि कटे तो आपका भी हिस्सा 12% कटेगा, एम्प्लॉयर भी 12% देगा। तो ये हम भी कोशिश करते हैं अपने आउटरीच और कैंपेन और सोशल मीडिया के तहत कि पीएफ कटना आपका जो सोशल सिक्योरिटी है आपके रिटायरमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, क्योंकि इसमें हम लास्ट कई सालों से करीब 8.25% का हम इंटरेस्ट देते हैं। इससे आपका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है जिसमें आप सेविंग्स करते रहेंगे तो जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट इसका जो हर साल का जो इंटरेस्ट है ये बढ़ता चला जाएगा और आपके रिटायरमेंट के टाइम पे बड़े काम आएगा। इसके अलावा हमने जो जितने भी अभी सुधार लाए हैं, रिफॉर्म्स लाए हैं, जिससे कि आपको अगर कोई सडन इमरजेंसी फाइनेंशियल नीड हो, आपको आवश्यकता हो, तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं।
बिल्कुल, ऐसे भी कहा भी जाता है कि छोटी छोटी जो बचत है वो आगे चलकर बड़ी हो जाती है, तो अगर अभी से ही बचाना शुरू करेंगे तो आगे जो है बेहतर होगा। अच्छा, इसमें किसी तरह का हेल्पलाइन नंबर अगर हो जिससे कि हमारे श्रोताओं को मदद मिल सके?
हाँ, ये हेल्पलाइन नंबर हमारे ईपीएफओ पोर्टल में है, मैं आपको बता देता हूँ।
जी बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न ले लेते हैं कि यदि एक पात्र कर्मचारी योजना अवधि के दौरान नौकरी बदलता है तो वो जो है ट्रांजैक्शन कैसे कर सकता है?
तो ये जब भी कोई भी एम्प्लॉई अपना जो एम्प्लॉयमेंट चेंज करता है, एक एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर पर जाता है, तो उसके साथ जो रहता है वो है उसका यूएएन नंबर। तो यूएएन नंबर अपने नए एम्प्लॉयर को देगा तो उसका अकाउंट जो है, एक अपने जो पुराना एम्प्लॉयर के साथ जो अकाउंट था उसका सारा पीएफ का खाता नए एम्प्लॉयर के पास ट्रांसफर हो जाएगा।
जी अच्छा, क्या इस योजना के तहत किसी कर्मचारी और नियोक्ता को होने वाले आर्थिक लाभ के बारे में आप बता सकते हैं?
तो ये आर्थिक लाभ ऐसा है कि ये जैसे मैंने कहा कि एम्प्लॉयर को 12% जो वेतन है उसका 12% उसको देना पड़ता है, सिमिलरली आपका जो है 12% कटता है, तो टोटल करीब करीब 24% आपका जो है वो सेविंग्स में जमा हो जाते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे, हमने कैलकुलेट किया था कि कोई अगर किसी एम्प्लॉई का 15,000 का वेतन है तो वो अगर 20 साल में ये जो 24% ये सेव करे तो इसका करीब करीब 14 से 15 लाख का सेविंग्स बनता है। तो ये देखें कि केवल ये छोटी छोटी जो रकम है इससे अगर सेविंग्स करते रहेंगे तो काफी बड़ा रकम सेव हो जाता है। इसमें करीब हमने 8% का इंटरेस्ट रेट लगा के इसको जोड़ा है, तो ये इससे काफी आपको सुविधा होगी जब आपको फॉर एग्जांपल अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए चाहिए हो, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, या फिर आपको घर खरीदना हो, तो उस टाइम पे पीएफ का आपका जो बचत है वो काफी काम देता है।
जी, तो हमें बहुत ही अच्छी जानकारी जो है ईपीएफओ से जो है वो हासिल हो रही है। कर्मचारी नामांकन सामाजिक सुरक्षा लाभ भविष्य निधि अंशदान और कर्मचारी नामांकन योजना से संबंधित जो है वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सवालों का जवाब देने के लिए केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त सीपीएफसी रमेश कृष्णमूर्ति जी। तो श्रोताओं, हमें है आपके फोन का इंतजार, आप नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 0112331048 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप 0112331444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं, हमें है आपके सवालों का इंतजार। और अब शिमला से राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राकेश जी।
जी सर, मेरा एक सवाल ये है कि जैसे हमारे जो कर्मचारी है वो अपना नामांकन जो है ऑनलाइन कैसे कर सकते?
हाँ नमस्कार, इसमें राकेश जी मैं ये बताना चाहूंगा, इसमें एम्प्लॉई जो है वो नामांकन नहीं करते हैं, नामांकन जो करते हैं वो नियोक्ता जो आप हैं, जो एम्प्लॉयर हैं वो करते हैं। तो आपको जो है पीएफ कार्ड, अपने जितने भी कर्मचारी हैं जिनको जिनका छूट अभी तक पीएफ कटा नहीं हो या फिर कटा हो और छूट गया हो पीएफ जमा करने में, तो इनका नामांकन आप जैसे करेंगे हमारे ईपीएफओ के वेबसाइट epfo.gov.in या फिर epfindia.gov.in इसमें जाएंगे तो एम्प्लॉयर नियोक्ता का अलग पोर्टल है, उसमें लॉग इन करेंगे तो उसमें एम्प्लॉई एनरोलमेंट स्कीम दैट इज कर्मचारी नामांकन स्कीम जो है उसका लिंक मिलेगा। उस लिंक में आप जाएंगे तो आपको वहां पे जिसको बोलते हैं रिटर्न फाइल करना। रिटर्न का क्या मतलब हुआ? रिटर्न जो है वो एक विवरण का ये है, माध्यम है, जिसमें आप बोलते हैं कि ये 5 लोग या 10 लोग या 20 लोग हमारे कर्मचारी हैं, उनका इस महीने में, जैसे आप ये ले लीजिए, ये हो गया दिसंबर का महीना खत्म हो गया, तो दिसंबर में अगर आपके 20 एम्प्लॉई थे उनका वेतन कितना था, उनका कितना पीएफ का कटना है, पीएफ का कटना जो है 12% आपकी तरफ से होगा और 12% उसके वेतन से कटेंगे, उसका विवरण देके जो टोटल आएगा इसका पीएफ का डिडक्शन वो आपको चेक इंटरनेट बैंकिंग या बैंक के माध्यम से आपको जमा करना होगा। जब ये जमा करते हैं तो इसको रिटर्न बोलते हैं, जमा करते हैं तो उसके बाद हर मेंबर को अपने पासबुक में ये जो 24% कटा ये 24% का विवरण दिखने लगेगा। तो ये तरीका है उनका ये करने नामांकन करने का और इसका इनका जो भुगतान है वो जमा करने का। एक चीज का ध्यान रखें, हम ये बोलते हैं कि ये नामांकन स्कीम के लिए आपको जो भी नए कर्मचारी जिसका जिनका पहले कभी यूएएन नहीं था उनको आप रजिस्टर कर रहे हैं तो उनका जो है यूएएन फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से जो उमंग ऐप है उसमें यूएएन आपको जनरेट करना होगा।
और इससे पहले कृष्णमूर्ति जी से हमने हेल्पलाइन नंबर के बारे में पूछा था, तो जैसा कि आपने हमें बताया कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आप 0111-280-9303 पर संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी संपर्क कर सकते हैं, वहां पर आपको अलग अलग क्षेत्र के बारे में जो है वो जानकारी मिल जाएगी, www.epfo.gov.in। और इसके अलावा हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1-44-70, नंबर नोट कर लें 1-44-70 पर आप कॉल करके इससे संबंधित जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और अब गुरुग्राम से जो है सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुभाष जी, हेलो।
हेलो
जी सुभाष जी, प्रश्न पूछे।
मुझे कुलासा कॉलेज जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान से बोल रहा हूँ।
जी बोलिए।
क्या जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है क्या वे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं?
जी हाँ, अवश्य करा सकते हैं
जी। इसकी जानकारी जो है वो हमने शुरुआत में ही दे दी थी कि 1 जुलाई 2017 और 31 अक्टूबर 2025 के बीच जो लोग प्रतिष्ठान में शामिल हुए थे वो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। 30 अप्रैल 2026 जो है वो लास्ट डेट है। और अब हम जानना चाहेंगे कि क्या जो है कंपनी जो है वो अगर पीएफ सैलरी से, आपने शुरुआत में हमने बात करी कि पीएफ सैलरी से बहुत सारे जो संगठन हैं वो पैसे काट लेते हैं, तो ऐसे में जो है वो क्या करना चाहिए?
जैसे कोई अगर एम्प्लॉयर हो, कोई कंपनी हो जिन्होंने काट लिया हो पैसा, तो उनको हर महीने का जो वेज मंथ हम बोलते हैं, जैसे दिसंबर का महीने का जो सैलरी है वो आपको 31 दिसंबर के बाद या 31 दिसंबर को आप जमा कर देते हैं उनके बैंक अकाउंट में या उसके हाथ में कैश दे देते हैं, तो इनको 15 जनवरी मतलब 15 तारीख जो है अगले महीने का उसके पहले के पहले इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न फाइल करना होता है। वो हमारे वेबसाइट में जाएं, उसको अपना रिटर्न तैयार करें। जैसे मैंने कहा, रिटर्न में हर एम्प्लॉई का जो वेतन का डिटेल्स, उसका कितना पीएफ कटा और कितना जमा करेंगे उसका डिटेल्स, उसका विवरण देना पड़ता है। और ये जमा करने के बाद जितना टोटल पीएफ का डिडक्शन होता है वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू एम्प्लॉयर जो है पीएफ को जमा कर देता है।
अच्छा, क्या मुझे अपने हिस्से का अंशदान देना होगा या फिर नियोक्ता को मेरे हिस्से का अंशदान देना होगा, ये भी एक प्रश्न आया है हमारे पास।
जैसा कि मैंने कहा कि इसमें जो मैंडेटरी है वो ये है कि अगर एम्प्लॉयर आज की तारीख से नामांकन शुरू कर रहा है तब तो आज से प्रोस्पेक्टिव मतलब आज के बाद का वो जमा करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो अगस्त 2025 के तारीख से वो जमा करना चाहता है तो उस केस में ये अनिवार्य है, मैंडेटरी ये है कि एम्प्लॉयर नियोक्ता अपना भुगतान, अपना शेयर जो है वो उसको अवश्य करना होगा। इसके साथ साथ क्योंकि ये डिले हो चुका है, इसमें 4-6 महीने का डिले हो गया है, उसका 7Q का इंटरेस्ट पे करना होगा लेकिन कोई पेनल्टी नहीं करना होगा। लेकिन अगर वो एम्प्लॉई अपना शेयर भी देना चाहता है, कटवाना चाहता है और एम्प्लॉयर भी जोड़ के देना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉई शेयर मतलब कि जो कर्मचारी का जो शेयर अंश है वो मैंडेटरी नहीं है। अच्छा। वो अगर नहीं देना चाहे वो न दे।
अच्छा, गुरुग्राम से सुभाष जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुभाष जी।
जी नमस्ते मैम।
नमस्कार।
और सर को नमस्ते।
नमस्ते
जी। सर मैं ये पूछना चाहता था कि एम्प्लॉयर जो है अगर 12% का जो अपना योगदान करते हैं वो 6 महीने का अंतराल, 6 महीने तक पीएफ सब करता है, ऐसा कोई मतलब पीएफ ऑफिस ऐसा अलाउ करता है या एम्प्लॉयर अलाउ करता है, कंपनी नियुक्ता करती है?
नहीं,
जरा बताइएगा। और सर एक चीज और, टीडीएस क्या पीएफ ऑफिस टीडीएस अलाउ करता है क्या एम्प्लॉयर? तो ऐसा तो नहीं अभी तक जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ होता है, लेकिन ऐसा हुआ है इसलिए शायद आपसे मैं पूछ रहा हूँ। जी नहीं,
तो दो प्रश्न थे आपके। एक तो ये मैं बता दूं कि अगर पीएफ रेगुलर बेसिस पे जिस महीने का है, जैसे वेतन मंथ अभी दिसंबर महीने का वेतन का महीना खत्म हो चुका है, तो उसका 15 तारीख के पहले पहले एम्प्लॉयर जैसे जो नियोक्ता है उसको पीएफ का भुगतान ईपीएफओ को करना अनिवार्य है। अगर 15 तारीख से डिले करता है तो उस पर उसको इंटरेस्ट भी पे करना है और पेनल्टी भी पे करना होगा। ये हर महीने का ये प्रक्रिया है, मतलब कि अब जनवरी जब खत्म होगा तो फरवरी 15 के अंदर अंदर उसको रिटर्न फाइल करना होगा और पीएफ का भुगतान करना होगा। इसमें कोई 6 महीने या किसी महीने का छूट नहीं है, ये हर महीने का काम है। उसको हर महीने 15 तारीख तक केवल 15 दिन का छूट है, उसके बाद उसको इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों लगेंगे। अच्छा, दूसरी बात हो गई कि टीडीएस काटने वाली। टीडीएस तो इनकम टैक्स को काट के इनकम टैक्स को देना होता है, उसका पीएफ से कोई लेना देना नहीं
जी, वो तो वापस मिल जाता है हर साल। अच्छा, और जो है अब हम थोड़ी मुख्य बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। आधे घंटे जो है चर्चा रही, तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम बताते हैं कि इसकी पात्रता जो है वो क्या है। 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 तक नियुक्त कर्मचारी, योजना अवधि है 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक। इसके अलावा अगर जुर्माना लगता है तो 100 रूपये प्रति प्रतिष्ठान जो है। कृष्णमूर्ति जी, अगर कुछ गलत हो तो प्लीज बताइएगा। और इसके अलावा यदि कर्मचारी अंशदान पहले नहीं काटा गया है तो वो माफ किया जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ आप बताना चाहें।
हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा कि कई जगह पे ऐसा देखा गया है जो एम्प्लॉयर हैं उसके अगर बाय चांस उसका वायलेशन जो है देखा गया और वहां उसके ऑर्गेनाइजेशन में हमारे इंस्पेक्टर्स पहुंच गए और उन्होंने रिपोर्ट दर्ज किया कि इसमें वायलेशन हुआ है, पीएफ काटना है, तो इनके अगेंस्ट हम इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। हमारा एक 7A का प्रोसीडिंग रहता है, तो 7A के अंदर हम इनका नोटिस देके इनका प्रोसीडिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन इस जो डिस्क्लोजर स्कीम है, जो हमारा कर्मचारी नामांकन प्रोग्राम है, इसमें ऐसे नियोक्ताओं को भी अलाउ किया गया है कि जिनके अगेंस्ट इंक्वायरी 7A के अंदर अगर उनका इंक्वायरी चल रहा हो तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी बोल दूं कि जितने भी नए एम्प्लॉई अगर इस दौरान में इसमें नामांकन होते हैं तो इनको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का भी फायदा ये उठा सकते हैं। इसमें आपको ध्यान होगा कि PMVBRY वाला जो रोजगार योजना है उसमें जितने भी नए कर्मचारी जो 1 अगस्त 2025 के बाद जुड़े हैं उनको स्कीम में जो पहले महीने का वेतन है उसको 2 किश्तों में उनको इंसेंटिव के तौर पे दिया जाएगा। इसके अलावा जो नियोक्ता है उसको प्रति माह जितना भी पीएफ का डिडक्शन होता है उसमें स्लैब वाइज 10,000 रूपये तक का अगर वेतन हो तो प्रोरेटा 10%, 10,000 और 20,000 के बीच में अगर उनका वेतन हो तो उनको 2,000 रूपये का इंसेंटिव, और अगर 20,000 रूपये से ज्यादा हो तो 3,000 प्रति माह पीएफ जो कटता है उसमें उनका इंसेंटिव के बेसिस पे उनको नियोक्ता को पार्ट बी के अंदर इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ये जो एम्प्लॉई एनरोलमेंट स्कीम में आप जिनको एनरोल कर रहे हैं उसके बेसिस पे आप PMVBRY का भी बेनिफिट ले सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें साथ में दोनों प्रोग्राम जुड़े हुए हैं
जी। कृष्णमूर्ति जी, और अब हमारे सबसे पुराने श्रोता दिल्ली से धर्मवीर जी जुड़ गए हैं। जी धर्मवीर जी।
हरा जी नमस्कार।
नमस्कार
सर। नमस्कार, नमस्कार। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर, मैं एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड कपड़ा मार्केट गांधीनगर से बोल रहा हूँ। क्यों यहाँ पे एक ऐसी ऐसी फर्म है जिनके पास 80-90 वर्कर काम करते हैं, उनको पीएफ के दायरे में कैसे लाया जाए, इसके लिए कुछ आपके पास कोई जानकारी स्कीम है? क्योंकि हर यहाँ पे 10 का स्टाफ तो ऑलरेडी होता ही है, बहुत ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां भी हैं, तो इसके लिए आपके यहाँ से कुछ इन चीजों पे क्या?
धर्मवीर जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। ये हम लोग सब मिलके काम करेंगे। इसमें हमारे तरफ से जितने भी हमारे पीएफ के ऑफिस हैं, जो हमारे रीजनल ऑफिस दिल्ली में चारों तरफ हैं, जैसे दिल्ली नॉर्थ, दिल्ली साउथ, सेंट्रल वेस्ट, और हमारा जो सेंट्रल वाले जो कार्यकर ये ऑफिसेज हैं, इसमें से ऑफिसेज को हमने कहा है कि हर जगह हर नियोक्ता के पास पहुंचे, उनको ये स्कीम, ये जो नामांकन स्कीम है इसके बारे में बताएं, और उसके बाद उनको भी प्रोत्साहित करें कि इस स्कीम का पूरा फायदा उठाएं। तो हमारे तरफ से तो पूरा इसमें आउटरीच कैंपेन चल रहा है
जी।
मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि आप भी वहां लोकल जितने भी शॉपकीपर्स हैं, जितने भी होलसेल मर्चेंट्स हैं, उनको भी एंकरेज करें जैसे कि वो इस स्कीम का फायदा उठाएं। और उसके बाद जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनको भी मैं अपील करूंगा कि आप ये पीएफ को ऐसा मत समझें कि ये आपकी तरफ से कटौती है, कटती है, टेक होम आपका कम होता है, इस ऐसा न सोचें। ये सोचें कि आपका रिटायरमेंट आपके फाइनेंशियल नीड्स के लिए, फ्यूचर के लिए ये महत्वपूर्ण बचत का कार्यक्रम है।
जी बिल्कुल। और अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, और हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम जो होगा आपके लिए लाभकारी होगा और फायदेमंद सिद्ध होगा। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में आने के लिए, कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया।
नमस्कार, थैंक यू।
और इसके साथ ही फरहत नाज को दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार।